पल पल पग पग भरे चलो मोक्ष महल कियो संयम सौरव साधना जिनको कर करा त्याग तपस्या तीर्थ का विद्या सागर नाम विद्या सागर नाम गुरु की आँख बोलती फिर मत की धन्य सीता मात है जिस पर गुरु का हाथ जिस पर गुरु का हाथ बोली अहिंसा परमो धर्म की शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की आचार्य भगवान श्री कुंभ कुंड महाराज की आचार्य गुरुवर्ष विद्या सागर जी महाराज की चलो सविता दस्ती वह माटी अशुभ रास्ता था सुनिएगा सरिता तक की वह माटी जिसने अपने जीवन को उन्नत बनाने की भावना उठाई और भावना के साथ संकल्पबद्ध होकर के कुंभकार के चरणों में सर्वस्व समर्पण कर दिया और वह माटी उस सरिता तट से उठ करके कुंभकार के उपाश्रम तक आ चुकी है और उपाश्रम का परिसर वह परिसर है जहाँ पर कि माटी का जीवन पूर्णता को प्राप्त होने वाला है। निश्चित ही यहाँ पर मात्र जीवन का निर्वाह नहीं किंतु निर्माण होता है। निर्वाह हर व्यक्ति हर प्राणी कर लेता है लेकिन निर्माण करने की कला तो मात्र मनुष्य के पास हुआ करती है। यदि सत्संगति उसे मिल जाए तो निश्चित जीवन में कुछ ऐसा निर्माण होता है कि दुनिया से चले जाने के बाद भी दुनिया उसको याद रखती है। तो यहाँ पर वह ऐसा स्थान है उपाश्रम का वह परिसर जहाँ पर अधोमुखी जीवन भी ऊर्ध्वमुखी हो उन्नत बनता है। अधोमुखी का अर्थ होता है पाप की ओर जाने वाला, ऊर्ध्वमुखी का अर्थ होता है धर्म को ग्रहण करने वाला। जिसका उपयोग पाप की ओर लगा हुआ है लेकिन गुरु का सहारा पाकर के गुरु की संगति पाकर के अथवा इस पवित्र क्षेत्र को प्राप्त करके उसका भी जीवन धर्ममय बन जाता है और हारा जीवन भी बेसहारा हारा हुआ बेसहारा जीवन भी सहारा देने वाला बन जाता है। और यहाँ पर अनेक प्रकार की समस्याएं स्वयं सुलझ जाती हैं। जिंदगी उलझन बनी फुर्सत नहीं काम से, कुछ समय तो निकालो प्रेम करो राम से। सुनाता यार पहली बार बोला हमने जिंदगी उलझन बनी फुर्सत नहीं काम से, अरे दो घड़ी तो कम से कम निकालो प्रेम करो राम से। 48 मिनट तक कम से कम आत्मा राम से या प्रभु के प्रेम करने या लगन लगाने के लिए समय निकालो। 24 घंटे जो है समय गृहस्थ आश्रम में निकल जाता है तो वह व्यक्ति धन्य है। कम से कम 24 घंटे में दो घड़ी आने 48 मिनट तो भगवान की भक्ति के लिए समय निकाल ही लेता है। कि क्षण भर की संगति से कई समस्याएं सुलझ जाती हैं और बहुत सी समस्याएं तो हमारे द्वारा स्वयं उड़ी जाती हैं। समस्या होती नहीं है वो, सिर्फ हम उसको समस्या मार लेते हैं, क्योंकि जब जब हमारी दृष्टि बाहर की ओर होती है तो समस्या ही समस्या दिखती है, पर जब बाहर से हट करके भीतर की ओर दृष्टि चले आए तो वह समस्या स्वयं सुलझती चली जाती है। हर उलझन सुलझन बन सकती है, हर उलझन सुलझन बन सकती है, हम उलझना छोड़ दें, और हर समस्या समाधान बन सकती है, हम स्वयं से नाता जोड़ लें। हमारा संबंध दूसरों से है इसलिए हमारी जीवन में उलझन बढ़ रही है, लेकिन स्वयं से एक बार नाता जोड़ करके देख लो, करना कुछ नहीं है। उलझन में उल्लू का है, उलझन का पहला अक्षर क्या है, तू माने उल्लू का, समता का सा जोड़ दो, समता का सा उसके आगे जोड़ लो तो क्या हो गया, सुलझन, काय को उल्लू बन रहे। उलझन के ऊ में समता का सा पहले जोड़ दो, अपने आप सुलझन बनेगी। ज्यादातर समस्या या उलझन हमारे मन की होती है, लेकिन जब सब संगति में हम बैठते हैं, गुरुओं के सानिध्य में हम बैठते हैं, तो अपने आप वो परिणति उत्पन्न होती है कि हर उलझन सुलझन बन जाती है क्षण भर की संगति से। वर्षों की संगति की आवश्यकता नहीं, थोड़ी सी योग्यता हो, क्षण भर में सारे के सारे यहाँ पर उलझने सुलझ जाती है। कई बार ऐसा होता है आचार्य महाराज के पास कई लोग बड़ी बड़ी समस्या लेकर पहुँचते हैं, तो लेकिन जैसे वहाँ पर पहुँचते हैं अपने आप वो समस्या का समाधान हो जाता है। यही तो प्रभाव है, और आयाचित होकर भी सभी यहाँ पर परामर्श पा जाते हैं, बिना मांगे ही यहाँ पर मार्गदर्शन मिलता चला जाता है। तभी तो आचार्य महाराज ने कितना बड़ा संघ बना लिया, और आप कितने त्यागी व्रती संयमी उनसे परामर्श यानी सलाह मांगते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े लोग आते हैं, विद्यार्थी पहुँच जाते हैं, हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए क्या करें। तो वहाँ पर बिना याचना की असी मसी कृषि और ऋषि को ऐसे सूत्र मिलते हैं, वे यहाँ पर आर्स यानी धर्म की परंपरा को प्राप्त कर लेते हैं। आर्स माने होता है ऋषि मुनियों द्वारा प्रतिपादित मार्ग। आगे प्रसंग प्रारंभ होता है पेज नंबर 44, वो माटी उपाश्रम में आ रही है। अब उसके जीवन की विकास यात्रा प्रारंभ होनी है, और शिल्पी उसके जीवन को कैसे उन्नत बनाता है सो आपको देखना होगा। लो अब उपाश्रम में उतारी गई माटी की तुरंत बारी तार वाली चालनी लाई गई, और माटी छानी जा रही है, स्वयं शिल्पी चालनी का चालक है। ये बच्चों को संभालो, दो होगा ना तब तो आतंकवाद होगा। इनकी मम्मी इनको गोदी में ले लो और उनको वहाँ घूमो परिसर में, तो आपका ही भला हो जाएगा तो सुनने वालों का ही भला हो जाएगा। हाँ, यहाँ सब तो मिलेगा। उपाश्रम में लाई गई माटी और बारीक तार वाली चालनी लाई गई, और स्वयं माटी छानी जा रही है, स्वयं शिल्पी चालनी का चालक है। बिना मरे किसी काम को अच्छे से करना हो तो अपने हाथ से ही करना चाहिए। हमने कई बार अनुभव किया पढ़ाई भैंस में भरोसे की भैंस, जो कि दो बातें कहावत है मंडल करने की, भरोसे का काम कभी अच्छा होता ही नहीं, स्वयं अपने हाथ से करो तो बहुत अच्छा हो जाता, नहीं तो दूसरा व्यक्ति करेगा उसमें आपने भरोसा, पता ना कैसे भरोसे, तुमको सबको पता होगा कैसे भरोसे की भैंस पड़ा गया थी। हमें तो पता नहीं, सुना था कि दो व्यक्ति दोनों की भैंस जाने वाले थी। अब एक ने सोचा सो तो जाओ कब तक इंतजार करें, और एक जगता रहा, बोले तुम भैया देख लेना कैसा क्या होगा। जैसे वो सो गया उसकी भैंस दोनों की भी आ गई, और एक ने दिया पड़ा और एक ने दिया पड़ी। पता नहीं क्या पढ़िया बोलते, हाँ पढ़ा पढ़िया। और उसने अब उसने देखा यार पढ़ा तो कोई काम का नहीं है, पढ़िया तो काम की, कम से कम बड़े होकर के भैंस बनेगी तो बढ़िया दूध देगी। अब ये तो सो रहा था, उसने जल्दी से उठा बताते और उसके स्थान पे पढ़ा को रख लिया और अपने वो पढ़ा जो पढ़ा पढ़िया थी उसको उठा के अपनी भैंस के पास में चला। अरे अरे भैंस भी आ गई, भैंस भी आ गई, भी आ गई। तो आगे क्या हो देख कर अरे अरे मेरी भैंस ने तो पढ़ा जाई, बोले भरोसे की भैंस तो पढ़ा ही जाऊ। ऐसी कहावत है ना, इसीलिए भैया किसी पे ज्यादा भरोसा न करा करो। हाँ वो तो हमने अपने मरे स्वर्ग नहीं मिलता, वो बिना ये पहले ही बता दिया हमने, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, ये तो कहावत है। तो शिल्पी स्वयं चालनी का चालक है, इसको इतना ही आपको समझना कि किसी भी सत्कार को करने के लिए स्वयं को पुरुषार्थ करना चाहिए तो बहुत अच्छा काम होगा। इसलिए शिल्पी स्वयं चालनी का चालक है और अपनी दया वह अपनी दयावती आँखों से नीचे उतरी मेरी माटी का दर्श करता है। भाव सहित हो, शुभ हाथों से खड़ी माटी का तरस करता है। चाव सहित हो और तन से मन से हरस करता है। भाव रहित हो, अनायास फिर वचन विलास होता है उसके मुख से की रिजुता की यह चरम दशा है और मरिता की यह चरम यथा है। धन्य माटी का संशोधन हुआ, माटी को संबोधन हुआ, परंतु निष्कासित कंकरों में समुचित सा अनुभूत संक्रोधन हुआ। अब जैसे शिल्पी ने माटी को छाना तो नीचे मधु माटी आ गई और कंकर पत्थर जो थे वो ऊपर रह गए। जैसे उसने माटी को हाथ से छू कर के देखा और वह प्रसन्न हो जाता है कि चाव सहित हो, उस नीचे गिरी माटी का दर्शन करता है, हाथ में लेकर स्पर्शन करता है तो घाव रहित वह माटी हो चुकी थी और सहज उसके मुख से वचन निकल पड़ते हैं। रिजुता यानी सरलता की यह परम दशा है। सरल परिणामों की श्रेष्ठता श्रेष्ठ स्थिति है। वह माटी भले कंकर पत्थरों के बीच में थी लेकिन कैसी दशा थी, लेकिन उसके भीतर जो सरलता थी आज वह सरलता रुजुता प्रकट हुई है और मुलायम की चरम दशा अंतिम कीर्ति व मृदुता की प्राप्त हो चुकी है तो प्रसन्न होता है। धन्य किंतु माटी के जो संशोधन करते समय चालनी की ऊपर जो कंकर पत्थर रह गए थे वो बड़े नाराज हुए और आंखों में निष्पाद समुचित का अनुभूत हुआ संक्रोधन, गुस्सा आने लगा। तथापि संयत भाषा में शिल्पी से निवेदन करते हैं बे कंकर कि हमारा वियोगीकरण माँ माटी से किस कारण हो रहा है? अकारण ही, क्या कोई कारण है? इस पर तुरंत मधु शब्दों में शिल्पी कहता है, वह कहने लगे कंकर कि आपने हमें माँ माटी से पृथक कर दिया, कोई कारण है कि अकारण यूं ही अलग कर दिया? गुस्से में कह रहे हैं, सीधे सीधे नहीं, टोन में अंतर आ गया। कारण में अंतर आ गया, खा लिया? देखो क्या कहा, खा लिया, खाना खा लिया खाना खा लिया खा लिया, मतलब पहले में अलग अंतर था, दूसरे में अब वो लोग ज्यादा समझते हैं, जो बोलते हैं वही समझ आते किस टोन में बोला जा रहा है, सामने वाला ही समझ आता कि टोन में अंतर आ गया। टोन ही की बात है, रिंग टोन। तो हमारा वियोगीकरण माँ माटी से किस कारण हो रहा है? का कारण ही, कोई कारण है? इस पर मधु शब्दों में शिल्पी कहता है, मृदु माटी से लघु जाति से मेरा यह शिल्प निखरता है और खर काटी से गुरु जाति से सो अविलंब बिखरता हूँ। दूसरी बात यह है कि शंकर दोष का वारण करना था मुझे, सो कंकर को उसका वारण किया। इस बात को सुनकर कंकर कुछ और गर्म हो जाते हैं। कंकरों के अग्रों में विशेष स्पंदन है और बचरों में पूर्व की अपेक्षा उष्णता का अभिव्यंजन है। वह शिल्पी कहता है मैं जिस शिल्प का निर्माण करना चाहता हूँ वो मृदु माटी से तो निखरता है, सुंदर रूप प्राप्त कर जाता है, किंतु कठोर जाति वाली कंकरों से वो मेरा शिल्प बिगड़ जाता है। घट का जब निर्माण करना होता है तो इतना सा भी अगर एक कंकर उस माटी में रह जाए तो पूरा का पूरा घट छिद्र सहित होने से निष्काम निष्ठ कोई उसका उपयोग नहीं हो सकता। तो यहाँ पर लघु जाति, लघु माने हल्केपन, हल्कापन जिसके भीतर है, इस माटी से तो मेरा सिर्फ निकलेगा किंतु कंकर जो है कठोर जाति वाले हैं, इसे मेरा सिर्फ बिगड़ अविलंब बिखरता है, शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि शंकर दोष का वारण करना। शंकर दोष क्या है इसी में आगे आपको बताया जाएगा कि मुझे शंकर दोष का वारण करना था, इसीलिए मैंने कंकर कोष का निवारण से दूर कर दिया कि मेरे शिल्प में शंकर दोष ना आ जाए। शंकर दोष क्या है आगे आता है, हमारा स्वयं खुलासा आगे कर रहे हैं। तो इस बात को सुनकर के और कंकर खराब हो गए और होठों में फड़फड़ाने लगे और बचनों में पहले की अपेक्षा और ज्यादा गर्मी आ गई। बचनों में गर्मी तो आ जाती है, गाँव की हो या जात की एक ही बात है, हमने और माटी में समता सदृशता है, भी सदृशता तो दिखती नहीं, तुम्हें दिखती है क्या शिल्पी जी, तुम्हारी आंखों की शल्य चिकित्सा हुई है क्या है? गात की है जात की, कंकर और माटी हमारी दोनों की शरीर, गात माने होता है शरीर, जात माने होता है जाति, हम भी माटी पृथ्वी का है, ये भी पृथ्वी का है, हम भी पृथ्वी के अंश है, वो भी पृथ्वी का अंश है, और जात गात की बात करो तो हमारा इसका शरीर एक ही जैसा है, कोई अंतर नहीं है, हमें और माटी में समता समानता है, जिसका हमको तो कहीं नहीं दिख रही, आपको दिख रही आंखों का ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, ठीक ठाक तो है आंखें, सवाई लगता है आंखों की शल्य चिकित्सा हुई है। और रही वर्ण की बात, तो वर्णों से वर्णन क्या करे, वह भी समान है हम दोनों में, जो है सामने कृष्ण जी का कृष्ण वर्ण, कृष्ण वर्ण नहीं है क्योंकि कृष्ण जी सांवले रंग के थे, इसी प्रकार हम भी काले हैं और माटी ही, तो दोनों के वर्ण में भी कोई अंतर समझ में नहीं आता, कृष्ण जी के समान हमारा सुंदर वर्ण है, सुनते हो क्या नहीं, कर्ण तो ठीक है तुम्हारे है, बेरे तो नहीं हो गए नहीं है, हाँ सुना सुनते हो क्या नहीं, कर्ण तो ठीक है तुम्हारे, फिर वर्ण शंकर की चर्चा कौन करे, सम वर्ण शंकर की अर्चा मौन करें हम, और शंकर मौन हो जाते हैं, और यह वर्ण शंकर की चर्चा छोड़ो, आप तो हमारे भीतर जो विराजमान है परमात्मा उसकी अर्चा पूजा करो, और ये काम करो पुनः माटी में हमें मिला दो। इस पर भी शिल्पी का भाव ताव नहीं पकड़ता, ताव जानते हैं, इस पर भी शिल्पी का भाव ताव नहीं पकड़ता, जरा सा भी धरा सा भी सहज साम्य भाव प्रस्तुत होता है उससे, कि इस प्रसंग में वर्ण का आशय ना ही रंग से है ना ही अंग से है, वरन चाल चरण ढंग से है, यानी जिसे अपनाया है उसे, जिसने अपनाया है उसके अनुरूप अपने गुण धर्म रूप स्वरूप को परिवर्तित करना होगा, वरना संकर्ण संकर दोष को वरना होगा और यह अनिवार्य होगा। इस कथन से वर्ण लाभ का निषेध हुआ हो ऐसी बात नहीं है, नीर की जाति न्यारी है और क्षीर की जाति, क्षीर माने दूध, दोनों के तरफ रस रंग भी परस्पर निरे हैं, परस माने स्पर्श, और यह सर्वविदित है, फिर भी यथा विधि यथा निधि खीर में नीर मिलाते ही नीर खीर बन जाता है। और सुनो, केवल वर्ण रंग की अपेक्षा गाय का खीर भी धवल और आग का खीर भी धवल, आग माने अकौआ होता ना, गाय का दूध भी धवल और आग का खीर भी धवल सफेद है, दोनों ऊपर से विमल हैं, परंतु परस्पर उन्हें मिलाते ही विकार उत्पन्न होता है, खीर फट जाता है, पीर बन जाता है वह। नीर का खीर बनना ही वर्ण लाभ है, वरदान है, और खीर का फट जाना ही वर्ण संकर है, अभिशाप है। इससे यही फलित हुआ अलम विस्तरेण। ज्यादा विस्तार से विराम हो, किंतु वह तुलसी कंकरों को समझाता है कि यहाँ पर वर्ण संकर दोष का आशय क्या है। यद्यपि आप वर्ण से एक रूप हैं, किंतु यहाँ पर वर्ण का आशय ना रंग से है, ना ही अंग से है, वरन आचरण से है। आचरण कैसा है, इस बात की मुख्यता होनी चाहिए। जिसने अपनाया है, जिसे अपनाया गया है, उसके अनुरूप अपने गुण धर्म को, रूप स्वरूप को परिवर्तित करना होगा। जैसे दूध में पानी मिलाते ही पानी स्वयं दूध रूप हो जाता है, तो ये वर्ण लाभ है। अथवा वर्ण हानि वह है, दोनों रूप रंग की अपेक्षा तो एक जैसे हैं। अकौवे का दूध भी सफेद होता है और गाय का दूध भी सफेद होता है, किंतु गाय के दूध में जैसे अकौवे का दूध मिला दिया जाए तो दूध फट जाता है, दुख का कारण बन जाता है। तो यह हो गया वर्ण संकर। वर्ण का लाभ का निषेध नहीं, किंतु क्षीर का फट जाना वर्ण संकर है, और नीर का क्षीर बनना ही वर्ण लाभ है, वरदान है। इससे यही फलित हुआ। एक प्रसंग जो है, संभवतः हमें ऐसा लगता है, एक बार की बात है, कुंडलपुर में हमारा चात्रमा चल रहा था। एक शादी का जो बेटी थी वो आहार लेते आहार दे रही थी, तो हमने उसको कहा रात्रि भोजन का त्याग करो। किसने कहा? एक महीने का रात्रि भोजन त्याग। तो हमने पूछा ऐसे क्यों? तो कहने लगे महाराज एक माह बाद हमारा विवाह है, शादी है। तो हमने कहा इसमें क्या बात हो गई? बोले तो अब हमारा विवाह वैष्णवों में हो जाएगा, उसकी शादी जो होनी थी वैष्णव धर्म में होगी। हमने कहा ऐसे कैसे? कहने लगा फिर उन्होंने बताया महाराज हम लोग अग्रवाल जाति के हैं, पर हम लोगों क्या होता है कि अपनी जाति हम नहीं छोड़ते, भले धर्म छूट जाए। अभी हम लोग शिवपुरी इधर जहाँ पर ग्वालियर तरफ जाए तो वहाँ ऐसी जाति अग्रवाल जाति है, इधर भी कई जगह है, उनमें क्या होता है कि दोनों जैन धर्मावलंबी और हिंदू धर्मावलंबी दोनों परिवार होते, उनमें आपस में रोटी बेटी का संबंध होता है। तब उस समय तो हमें ध्यान नहीं, जवान ने कहा हो सकता है ठीक है, बाद में पता चल गया हम लोग व्यर्थ थे कि जिस बेटी ने 20-25-25 साल की उम्र तक जैन कुल में रह करके जैन धर्म का पालन किया, किंतु अपनी जाति को छोड़ करके धर्म भले छूट जाए किंतु हमारी जाति नहीं छूटना चाहिए, इस हटाग्रह को लेकर के वो इस तरह से उनका विवाह वैष्णव अन्य धर्मावलंबी में कर देते थे, या वैष्णव कुल में जिसने जन्म लिया और लेकिन उसके लिए वो अपने कुल में लड़का नहीं मिला तो जहाँ जैन कुल में वो बेटी का विवाह कर देते हैं। और इस परंपरा को मुनि संघों में भी स्वीकार कैसे किया कि कुछ ऐसे श्रमण संघ हैं जो कि कहते हैं कि यदि मान लिए अपने जैसे चलता है गोलापुर परवार खंडेलवाल यही इन जातियों में अगर आपने विवाह कर लिया तो कहते हैं ये वर्ण संकर हो गया, और यदि मान लिए आपने भले धर्म छूट गया लेकिन अपनी जाति में कर लिया तो उसके तो आहार लेते हैं, किंतु इनको कहते हैं हम आपसे आहार नहीं लेंगे, वर्ण संकर हो गया। तो हमें लगता है ऐसा प्रसंग देख करके आचार्य महाराज ने सोचा कि जहाँ पर धर्म ही नष्ट हो गया तो वर्ण लाभ नहीं हुआ, वो तो सब कुछ चला गया, पर यदि मान लिए धर्म बचा है इस तरह से यदि विवाह संबंध होते हैं तो ये कोई दोषपूर्ण नहीं है, ये तो वर्ण लाभ ही है, क्योंकि एक दूसरे के धर्म कम से कम सुरक्षित हैं। और हमारे पास कई बेटियां वहाँ पर भी आई, अभी जो लोग जुड़े हुए हमारा इतना आशीर्वाद दे दो कि हमारा विवाह जैन कुल में हो जाए, माता पिता थे हमारे बेटे का, क्योंकि जिसने 20-22 वर्षों तक जैन कुल को धर्म को पाला और बाद में थोड़ी सी परिस्थिति बसात अगर वहाँ चली आती सारी जिंदगी वो पछतावा करती है कि आखिर हमारे लिए कितना मुश्किल दुर्लभ जो जैन धर्म मिला था वो भी हाथ से छूट गया। तो संभवतः ऐसा ही लगता है कि धर्म तो शाश्वत है, जातियाँ तात्कालिक परिस्थितियों से उत्पन्न होती हुई ऐसी जितनी भी जातियाँ बनी है उन सबका कोई ना कोई इतिहास रहा है, पर वो इतिहास ऐसा रहा इसे कहीं ना कहीं ये जातियाँ उत्पन्न परिस्थिति से हो गई, लेकिन धर्म तो शाश्वत है। धर्म अगर छूट जाए तो ये वर्ण हानि है, और धर्म बना रहे भले जाति ईसा वीसा हो भी जाए तो भी वर्ण लाभ है। संभव ऐसा ही प्रसंग आचार्य महाराज के दिमाग में कुछ उत्पन्न हुआ होगा। तो यहाँ पर एक प्रसंग आपके सामने रखा। तो माटी ने शंकर को समझाया कि मुझे शंकर दोष का निवारण करना था, इसलिए और आगे माटी शिल्पी समझाता है, अरे कंकरो माटी से मिलन तो हुआ पर माटी में मिले नहीं तुम। सुन रहे माटी से मिलन हुआ पर माटी में शेयर में बहुत अंतर है। मे माने इन, ऐसे माने आउट, पंचमी व्यक्ति में से अलग हो गया। माटी से तो मिले किंतु माटी में मिले नहीं तुम, माटी से छुबन तो हुआ पर माटी में घोले नहीं तुम। शक्कर दूध में डाल दो घोलेना तो मीठे लगे ही क्या? शक्कर जब दूध में घुल जाती है तो दूध मीठा हो जाता है, ना घोले नीचे जमी रहे तो ऊपर दूध मीठा होने वाला। इतना ही नहीं, चलती चक्की में डालकर तुम्हें पीसने पर भी अपने गुण धर्म भूलते नहीं तुम, भले ही चूरण बनते रेतल माटी नहीं बनते तुम। है चलती चक्की में डाल के पीस दो, बढ़िया बाफड़ा या हलवा बना हो और आटा तो बहुत उसमें कंकर पिस गया हो तो पूरा का पूरा मजा चिड़चिड़ा हो गया। अब वो इतना पिस गया कि उसमें आप चाहो कंकर अलग कर दो और हलवा अलग करो सो भी नहीं कर सकते। तो इतना सा कंकर कभी आ जाए और पिस जाए तो भी वो कंकर अपना स्वभाव माटी में मिले, माटी से छुबन हुआ माटी में घोले नहीं तुम, और इतना नहीं चलती चक्की में डालकर पीसने पर भी अपने स्वभाव को भूलते नहीं तुम। रेतिल चूरण तो बनते हो पर माटी नहीं बनते, जल के सिंचन से भींगते भी हो, ऐसा नहीं कि भींगता, भींगते भी हो परंतु भूल कर भी फूलते नहीं तुम। माटी संग तुम में आती नमीना, क्या यह तुम्हारी कमीना। नीचे और कुछ लिखा क्या तुम्हें? हाँ ये क्या है ना, ये प्रिंट आचार्य महाराज से की कर्नाटक से आए तो ये इससे अपने आप एक गाली के रूप में तो हमने इसको कट भी किया था। वैसा जी भाई ये नीचे की पंक्ति ना दे, उन्होंने भी प्रेस में कट करवाया था, कट होने के बाद सुना आ गई, अब क्या आ गई पता नहीं। क्या ये तो आचार्य महाराज ने प्राय शब्दों को तोड़ फोड़ गौर किया है। तो माटी संग तुमने आपकी कमी ना, क्या यह तुम्हारी कमी, क्या ये तुम्हारी कमी नहीं है? माटी में रह रहे हो पानी के साथ भींगते तो हो, जल के सिंचन से भींग जाते किंतु माटी के समान फूलते नहीं। माटी में थोड़ा सा पानी डाल दो आग, देखो माटी में हलवे जैसे मुलायम, तो कंकरों में कितना भी पानी डाल दो तो कभी भी फूलते नहीं। इधर बताते कुछ मिट्टियां ऐसी हैं भूमि खेतों की, पथरीली बता ना, कितना भी पानी डाल दो सब उसमें ससक जाता। काली मिट्टी नहीं है, लाल मिट्टी है, और वो दानेदार पत्थर वाली मिट्टी, कितना भी पानी डाल दो लेकिन वो मुलायम कभी भी बनती नहीं। तो माटी को कह रहा है शिल्पी कि कंकर तुम्हारी एक कमी है कि नहीं बताओ, तुमने कहा है जल धारण करने की क्षमता, जलाशय में रहकर भी युगों युगों तक नहीं बन सके जलाशय तुम। तुमने जल धारण करने की क्षमता में, जलाशय माने तालाब में रह रहे हो फिर भी जल को कभी तुमने धारण करने की कभी योग्यता हासिल तुमने नहीं की। मैं तुम्हें हृदय शून्य तो नहीं कहूँगा परंतु पाषाण हृदय अवश्य है तुम्हारा, दूसरों का दुख दर्द देख कर भी नहीं आ सकता कभी उसे पसीना, ऐसा है तुम्हारा सीना। ऐसा मैं तुम्हें हृदय से रहित तो नहीं, पत्थर हृदय जरूर है कि दूसरों के दुख दर्द देखे जिसके सीने में यानी हृदय में सकीना लाए, ऐसा तुम्हारा पत्थर हृदय है, तुमने कभी दया का सद्भाव नहीं। फिर भी ऋषि संत का सदा सदुपदेश सदा देश हमें यही मिला है, पापी से नहीं पर पाप से, संकट से नहीं पर संत से घृणा करो अय्यार, नर से नारायण बनो समयोचित कर। फिर भी हम आपसे ग्लानी या द्वेष नहीं रख रहे, अब हमें अपना घर बनाना है तो कांकड़ों को अलग से करना पड़ेगा। जब सामने सामने द्वेष या दुर्गुण तुम्हारे देखना है फिर भी हम स्वीकार कर ले कैसे। हमें ऋषि संतों से उपदेश यही मिला है कि पापी से नहीं किंतु पाप से घृणा करो। कोई व्यक्ति हमेशा पापी नहीं होता, जब उसके भीतर से पाप निकल जाता है तो वही परमात्मा बन जाता है। पापी पाप जुड़ गया इसलिए वो पापात्मा, इसलिए पाप से नहीं पापी से नहीं, पाप से घृणा करो पंकज से नहीं पर पंख से घृणा करो। अर्थात पंकज जो है भले कीचड़ में उगा है लेकिन वो अपने आप में तो स्वस्थ और स्वच्छ है, वो तो कीचड़ में उत्पन्न हुआ ये बात अलग है। जितने भी महापुरुषों का इतिहास आप पढ़ेंगे तो सबका इतिहास पापमय ही रहा है। गौतम गणधर का हमने इतिहास पढ़ा तो उसमें बताते हैं गौतम गणधर से पूर्व जन्म में उनका जी किसी राजा की रानी थी, और वह राजा की रानी एक बार छत पे खड़ी थी, उसने देखा एक वेश्या वहाँ से निकली और बहुत सारे पुरुष उसके साथ थे, तो उसके मन में विचार आया कि कहाँ मैं यहाँ एक राजा के साथ बंधी पड़ी हूँ, यदि मैं भी बाहर निकल जाती तो आज मैं भी कितने मौज मस्ती से जिंदगी जी रही होती, देखो उसके पीछे इतने पुरुष हैं और कैसे मजे में वह। इतना विचार करके वो रानी अपनी दासी को लेकर के उस राजमहल को छोड़ करके वो बाहर निकल आई, और बताते हैं बाहर निकली और ऐसे जगह जाकर के वो रहने लगी जहाँ पे इस प्रकार के पाप प्रवृत्तियाँ होती थी। तो उसी समय बताते हैं कोई मुनिराज का पदार्पण हुआ और जब वो वहाँ से निकली और मुनि महाराज के उपदेश उसने सुना उस रानी ने, तो उसको पश्चाताप हुआ कि मैंने अपने शील व्रतों को खो करके और इतने बड़े राजा की प्राणी का पद खो करके और ये कैसा पतित मतलब पाप का काम मैंने किया, और तुरंत उसको पश्चाताप हुआ और पश्चाताप करके उसने मुनि महाराज से अपनी क्षमा याचना आदि करते हुए व्रतों को धारण किया, और उस पवित्र भावना के साथ तप करते करते उसने अशुभ कर्मों का क्षय किया और आगे जाके वही जीव गौतम गणधर बना। ऐसे भगवान महावीर का इतिहास देखो तो कहा भील की पर्याय में रह करके वो मांस भक्षण करने वाला भील, और थोड़ा सा गुरु का सानिध्य मिला, मात एक मुनिराज को देख करके उसने कहा भगवान आ मुझे आत्म कल्याण कैसा होगा, तो महाराज ने बताया हिंसा आदि पांच पाप का त्याग करो, और उसके कहने पर यथाशक्ति उसने पांच पाप का तो वही सुरवा भील आगे जाकर के भगवान महावीर बना। आदिनाथ का आप इतिहास देखेंगे तो महाबल और श्रीमती का जो जीव कितने राग में आसक्त थे, और इतने राग में आसक्त थे कि उसमें बताते हैं उनके शयन कक्ष में उनका मरण हो गया, किंतु एक मुनि का उपदेश सुनकर के जो सम्यक धारण किया और उसके कारण ही आगे जाकर के भगवान आदिनाथ बने। किसी का भी इतिहास साफ सुथरा नहीं है, इतिहास तो सबका एक जैसा है, सब एक थैले के चक्के लगते हैं। अब कहा पता वो तो पुराण पढ़ने पड़े, हमने तो अपने काम की बात सुना दी, बात तुम लोग तो हमें ज्यादा पुराण की बातें यादें रहती नहीं, और हमने ज्यादा पुराण पढ़ेंगे नहीं। अब बिना पढ़े अपने को मार्ग मिले तो ज्यादा पढ़ने को कहा काम बता, जब बिना पढ़े आइए बन गए तो काय को पढ़ना होगा। अगर बहुत हमें ध्यान नहीं, कभी कोई अभी पद्म पुराण एक बार पढ़ा था, लेकिन गृहस्थ लोग ज्यादा पुराण पढ़ते रहते हैं, और एक वो अपने वीरन दादा दिख नहीं रहे आजकल गाँव में, वो उनको जो सारे पुराण रटे से हैं, तो सब आगे महाराज उनको ब्याह कब गया, उनका ब्याह कौन सुबह उनको कितने, और हमने वो ये कौन ही पता हमें फिर तो महीने से। तो पुराण ग्रंथों में ज्यादातर ये किस्से मतलब जो चर्चा आती ना तब उनके 18 नाति के कथा और वे उनकी पत्नी बहन के पति और बहन के बहन के बहन के वे कहा बंद बनी। हमने कहा हमने यही सब छोड़ के आ गए, अब कसी चिंता नहीं। तो यहाँ पर जिसका भी इतिहास हम देखते हैं तो अपावन ही रहा है, किंतु इसलिए व्यक्ति से घृणा मत करो, उस व्यक्ति में जो दुर्गुण है वो यदि दूर हो जाए तो कभी भी व्यक्ति परमात्मा या सन्मार्ग पे चल। इसीलिए हमारा हमेशा कहना है किसी भी एक व्यक्ति के प्रति कभी भी स्थायी धारणा मत बनाओ। हो सकता है जिसको आप बुरा समझ रहे हैं वो बहुत अच्छा निकल जाए, जिसको आप बहुत अच्छा समझ रहे हैं वो कहीं भी बुरा भी निकल सकता है। एक व्यक्ति की मेरी नजर में कद्र बहुत है, एक व्यक्ति की मेरी नजर में कद्र बहुत है। भला तो वो भी नहीं है पर बुरा कम है, भला तो वो भी नहीं है पर बुरा। दुनिया में कौन भला है, हम भी भले हैं क्या? नहीं। बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, जो नित खोजा आप में मुझसे बुरा ना। वास्तव में दुनिया की बुराई खोजते लेकिन एक बार खोजने अपने में प्रारंभ कर दें तो वह। इसीलिए कभी भी एक व्यक्ति को धारणा हम तो यही समझते हैं भैया कि उसमें कुछ ना कुछ तो भला तो एक व्यक्ति की मेरी नजर में कद्र बहुत है, भला तो वो भी नहीं है पर बुरा कम है। कोई कम बुरा व्यक्ति मिल जाए तो उसको स्वीकार कर लो कि पूरा भले के चक्कर में वो और हाथ से चलाए। इसीलिए स्थायी धारणा कभी मत बनाओ। पर हमने तो इसका अनुभव करके देखा संग में, जिनको हम समझते थे कि अरे ये तो बढ़िया दीक्षा लेते और बढ़िया आत्म कल्याण करेंगे, साधु बनेंगे, आरिका बनेंगे, और हमारा उनके प्रति इतना, हमारा मतलब उनके प्रति इतना समर्पण भाव या उनके प्रति ऐसी आस्था थी कि जब कभी दीक्षा होगी सबसे पहले संयम को अंगीकार करेंगे, किन्तु वो तो पीछे रह गए। तो जिनको हम सोचे ये क्या महाराज माता जी बनेंगे, लग रहे नहीं है सच्चे बतिया रहे हैं, इतने बातें कर रहे हैं, इतने हंस रहे हैं, या उनके गंभीर सा कुछ नहीं है। बाद में पता सबसे पहले आगे दीक्षा का उन्हीं ने तरीका चढ़ाया और दीक्षा लेके वो महाराज माता जी बन गए। इसलिए जो बहुत हंस रहा है बोल रहा है उदम कर रहा है वो आत्म कल्याण कर सकते, ऐसा नहीं कि बहुत गंभीर बेटा बिल्कुल बहुत बड़ा आत्म कल्याण कर रहा हूँ, नहीं। जिन्हें जो धम्मे सूरा कम्मे सूरा से धम्मे सूरा, जो दुनिया का कर्म करता है वही धर्म के मार्ग में आगे जोरदारी से आगे बढ़ता है। जो इधर भी कर्म नहीं कर पा रहा वो उधर भी धर्म नहीं कर पाएगा, वो बीच बिकंदर ही रहेगा। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट कोई काम को नहीं, अब आपका इसका विशेष नहीं पता अपने को, लेकिन बात एक कई लोग न इधर जो इधर सुख कर गृह आश्रम में जो सूरवीर है वही मोक्ष मार्ग में सूरवीर बनता है। और यहाँ पर जो दुनिया के काम कर रहे हैं समझ, यदि थोड़ा सा उसको सदगुरु का संपर्क मिल जाए तो शर्मा। इसीलिए आचार्य महाराज ने वृद्धों को थोड़ा रोग दिया और जवानों को दीक्षा दी, क्योंकि ये कर्म में सूर्य पाप भी कर सकते हैं तो धर्म भी अच्छे से कर सकते हैं। जो पाप नहीं कर सकता वो धर्म भी नहीं कर सकता, नहीं कर पाएगा। देखना शक्ति भीतर जिसके बाद पाप करने की शक्ति है, यदि थोड़े से सदगुरु का सन्मार्ग मिल जाए या थोड़े से संगति मिल जाए तो वही जब जैसे पाए सागर महाराज जब वो मुनि बने तो लोग कहते हैं महाराज ये नौटंकी है, नाटक करने वाला ये व्रतों को धारण करके भी अच्छे से पालन नहीं करेगा। नहीं, शांति सागर महाराज ने कहा नहीं, ये चूंकि इस कार्य में इतने उत्साह से जुटा हुआ है, इसको सन्मार्ग मिलेगा ये भी वहाँ पर भी उतने अच्छे से पालन करेगा। और उन्होंने आचार्य बन करके तथापि देशभूषण जी महाराज उन्हीं पायसागर महाराज जी के शिष्य थे और उन्होंने अनेक दीक्षाएं आदि दी, स्वयं में भी कठोर तपस्या कर ली। ऐसा शक्ति तो अपने पास है, बस उसका दिशा अगर परिवर्तित होती है तो वहाँ पर उन्नति का मार्ग खुलता चला जाता है। इसलिए वह शिल्पी कहता है ऋषि मुनि संतों से मुझे आदेश और उपदेश मिला है कि पापी से नहीं पर पाप से और पंकज से नहीं पर पंक से घृणा करो। आर नर से नारायण बनो, समयोचित कर। ये मनुष्य जीवन मिला है, नर पर्याय मिली है, तो नारकी बनने के लिए पर्याय नहीं मिली है हमें, तो नारायण बनना है, नारायण यानी भगवान बनना है। यदि आज हमें नर पर्याय मिली है तो ऐसा काम करो कि नारायण बन सको। कम से कम पांच पाप को यथाशक्ति तो त्याग, जो पांच पाप को त्यागता है वो नर से नारायण की ओर जाता है। जो पांच पाप में लिप्त रहता है, हिंसा झूठ चोरी खुशी परिग्रह में जिसका जीवन निकल रहा है, वो नर से नारकी तो बन सकता है, नाग तो बन सकता है, किंतु नारायण कभी नहीं। तो नारायण बनने का मार्ग हमें मिला है, ये मनुष्य पर्याय मिली है। समयोचित कर कार्य, समय के अनुसार अपना उचित कार्य करो, उचित पुरुषार्थ करो। आज अगर आप पुरुषार्थ नहीं कर पाए तो अगला जन्म क्या मिलेगा, कोई भरोसा है क्या, मर के क्या बनोगे। अरे आज जन्म कुल मिला है दुर्लभ, उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना हो, हाँ उत्तम देश संगति दुर्लभ, श्रावक और पाना दुर्लभ, सम्यक दुर्लभ, संयम पंचम गुण खाना, ये सब दुर्लभता है हमें आज मिली है मनुष्य भाव में, जिन्होंने भगवान की शरण मिल गई है। अनादि काल से हम लोग चारों गतियों में भटक रहे हैं, किंतु आज हमारा सौभाग्य था कि हमें जिन्होंने भगवान की संगति मिली है। और सबसे बड़ा सौभाग्य तो हम ये मानते हैं इस पंचम कली काल में भी हमें विद्या सागर जैसे गुरु मिल गए। सकते सही माँ को ये समझना, भूतों अभी अगर 50 वर्ष पहले आपने जन्म लिया होता तो लोग तरसते हमें कभी मुनि के दर्शन नहीं मिले, बड़े बड़े भागचंद जी आओ पंडित जी वगैरह लिखते चले गए, वे गुरु कब मिले ही, सुनते तो हैं किंतु आप ग्रंथों में किंतु मुनियों का दर्शन नहीं होता। और कहीं क्वचित कदाचित मुनि मिलते थे, शुक्लाचारी होते थे, परिस्थितियों के डरे हुए भयभीत होते थे, तपस्या तो करते थे किंतु आगम का उनके पास ज्ञान नहीं था। किंतु आज हमारा कैसा सौभाग्य है, और हम तो ज्यादा अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं, क्योंकि हमने तो इतना कभी नहीं सोचा था कि विद्यासागर महाराज जी के पास जाना है। जहाँ जन्म लिया वहाँ लगा था हर साल चात्र मास होते थे, लेकिन एक ही मन में भाव था यदि आचार्य विद्यासागर जी का नाम तो सुना है, बहुत कथक मतलब कड़क संत है, और वो रखते नहीं है ऐसा, और संघों में आचार्य महाराज आए तो भी कहते चल भैया जो कहेगा जब कहेगा जैसा तुझे दिखता सब दिला देंगे, लेकिन मन में एक ही विकल्प था एक बार विद्यासागर महाराज जी के पास में जाऊंगा, और वो अगर रख लेंगे ठीक, नहीं तो बहुत सारे कॉलेज के ऑफर तो खुली अपने कहा यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कॉल आ रहे थे, हर कोई रखने को तैयार था, लेकिन मन में यही एक बार था विद्या। तो हमने सुना था आते से ये पूछते हैं वो पूछते हैं सब बहुत सारी बातें पूछते हैं, हमने कहा फिर भी एक बार ट्राई करके तो देखो लग जाए तो लाभ थी। पर हम आचार्य महाराज के पास पहली बार पंडलपुर में जब पहुंचे, वहाँ नरसिंहपुर में पहले पहुंचे तो डर भी लगा था, मैं आकर से यही ना कहने रुक जाओ, अभी इतनी कैपेसिटी भी नहीं थी। फिर भी आचार्य हाँ हाँ देखेंगे अभी नहीं अभी जाओ, चला कह दिया। कुंडलपुर जब पहुंचे आचार्य महाराज के पास 92 की 90 की बात होगी, और आचार्य महाराज नहीं हाँ 90-91 की बात है, आचार्य महाराज से पूछा सब्जी क्या करते हैं क्या पढ़ते हैं सारी बातें पूछी, वो जो जयलान बनी ना वही आचार्य महाराज जैसे थे। हम पहुंच गए तो भाव मन में भाव तो थे हम आपके पास रहना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा क्या पढ़ते हो क्या, अभी ऐसा नहीं अभी कुछ नियम नियम पालन किया करो। हमने कहा तो बोले रात में खाना खाते हो, हमने रात में खाना नहीं खाते, और उन्होंने एक दो प्रश्न पूछे हमें ज्यादा याद नहीं, आलू प्याज वगैरह ऐसे कुछ पूछा होगा उन्होंने, हमने करते नहीं तो बता दिया तुम आगे से कुछ व्रत दे दो, फिर कौन सा व्रत दे रहे हैं, हमने कहा ब्रह्मचर्य व्रत दे दो, जिससे जाना चाहते तो कह रहे अपने हाँ ठीक है बोले 2 साल का व्रत ले लो, और 2 साल का व्रत लेकर के वहाँ से चले गए। लेकिन बाद में जब वहाँ पे मुक्तागिरी वगैरह जब पहुँचने हाँ मुक्तागिरी पहुँचे तो हमने फिर वहाँ निवेदन किया कि आज जैसे हम ये महाराज जी की प्रशांत सागर महाराज जी के समय दीक्षा होने वाली छिल्लक दीक्षा, तो सात महाराज जी तो हम वहाँ पर पहुँचे। फिर आचार्य महाराज ने निवेदन किया तो आचार्य महाराज कहने लगे देखो अभी तो दीक्षा हुई है अभी 1 साल तक हम किसी को नहीं रखते, ऐसा होने का अभी अगले चात्र मास में तुम आ जाना, इतना कह तो दिया गया चात्र मास में आना, और हमने थोड़ा बहुत तो जो भी है विश्वास उतना नहीं, फिर भी आचार्य महाराज कह रहे हैं थोड़ा विश्वास हुआ और चात्र मास में वहाँ पर पहुँच गए। तो आचार्य महाराज ने बिना किसी परिवार की अनुमति के, क्योंकि हम तो हमारे साथ के कई पुराने ब्रह्मचारी थे, उनको लेकर क्या उनको लेकर क्या माता पिता व्रत ही नहीं देते थे, और हमें भी कौन आजीवन व्रत दिया था, और हम पहुंचे निवेदन किया, हाँ आपको थोड़ा बहुत पूछा और बस ठीक है आशीर्वाद रुक जाओ ड्रेस चेंज कर लो। अरे हमने कहा लग गई लाश की गर्मी, फिर हमने कहा शाम को आचार्य से आकर के हम केसमेंट भी कर ले। अरे बोले केसमेंट कैसे बनेगा, कर ले। हमने कहा आप आशीर्वाद दे दो बन जाएगा। अब किसी को कोई खबर नहीं, घर वालों को तो अभी ही पता नहीं, और हमने तो हमने आचार्य महाराज के लिए हमने पहले के लिए आज से कोई नहीं आएगा, आपको आशीर्वाद दे दो। और वो जल्दी से हमारी बातों में आ गए, पता नहीं उनने क्या देखा क्या समझा क्या पढ़ा, कोसाई और आशीर्वाद दे दिया, और सुबह की सूंज का भी आशीर्वाद दे दिया। उसी समय कोई एक श्रावक आए थे, हमने उनको बैग और घड़ी पकड़ा दी, हमने कहा ले जाओ तुम घर दे दियो भैया लड़का जाओ। अब वहाँ पे केशव वगैरह आते थे, आते थे सुबह सुबह, जब हम केशव चिन्मय सागर महाराज जी थे जो सीनियर, वो वहाँ पर थे और हम उनके कमरे में, चूंकि जब वो बीमार थे अस्वस्थ थे तब वो वहाँ रुके थे, तो एक महीने हमने उनकी बहुत सेवा की। और फिर यहाँ पर जब वो मिले उनके कमरे में तो 1 बजे रात में केशव करने बैठ गए, और फिर उस समय सुबह आचार्य महाराज स्वयं उनसे कहा वो ब्रह्मचारी, वो आया ब्रह्मचारी कहा पूछते पूछ हम ऊपर ही आचार्य महाराज आए और देख कर लेने लगे, हाँ कैसा चल रहा है, अच्छा लगता है तुम घर की सीख के आए हो। अरे हमने कहा तो बढ़िया से, और जब हमें अब उस समय हम ज्यादा नहीं जानते थे, चलो आतिशी रख दिया, अब हमें समझ में आता है कि अगर आचार्य महाराज की चरण का सानिध्य हमें नहीं मिलता, हम किसी टीवी पर प्रचारक स्टारक मुनि महाराज से होते, किंतु आत्मकल्याण का मार्ग हमें नहीं मिलता, क्योंकि टीवी पर प्रवचन करना और बहुत बाहर बाहर लूट लेना ये तो बंधु बहुत आसान है, भाव भाव में ये सब कुछ सुलभ है, किंतु अध्यात्म का मार्ग जो गुरु महाराज ने हमें दिया, हम आचार्य महाराज 3.5 साल ब्रह्मचारी अवस्था में रहे और 3 साल तो उनके साथ ही उनके कमरे में सोने का मौका मिला, और पूरी सेवा में जो उनकी निकट से चर्या देखा, और तो बाद में आज हमें लगता है कि आज संचम काल में हमारे जैसा पुण्यात्मा कोई होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हम जा ही रहे थे, लेकिन आचार्य महाराज की कृपा और उनका जो अपना भी पूर्वता पुण्य होगा, तो आज हमें समझ में आता है कितनी अच्छी जगह हमें शरण मिली, और आज हमारे गुरु जो चरण में आज संचम काल में, यदि आप लोगों का सौभाग्य है तो ऐसे भीतरागी संत आगे मिलेंगे ये भी नहीं कह सकते हम। आज का युग बहुत स्वर्णिम युग है, जिससे गुरु जी के युग में हमने जन्म लिया, और आगे आने वाले संतों में वैसी वीतरागता वैसी सहनशीलता और वैसी धर्मनिष्ठा होगी हम कह नहीं सकते, लेकिन हम तो अपने आप को सौभाग्यवान, इसलिए हम कहते प्रति समय आनंद लूटो, अर्थात जो जिनेन शासन जो महाव्रत अणुव्रत जो महाव्रत हमें मिले हैं ऐसे गुरु मिले हैं, इसके बाद भी अगर हम जिंदगी भर रोते रहे तो और कहाँ हंसोगे बताओ। बहुत समय का सौभाग्य बुंदेलखंड का इसलिए सौभाग्य है कि कहाँ कर्नाटक की भूमि में जन्म लिया विद्यासागर महाराज ने, और राजस्थान की भूमि में दीक्षा हुई, दाल बाफला खाया वहाँ, और कहाँ बुंदेलखंड के और यह लगता मैं कब बुंदेलखंड को अपने कर्म भूमि बनाया। देखो 25% हम लोग आपको यही एक बार नेमावर में थे, एक सज्जन बताने लगे महाराज खाते गाँव के हम दिल्ली गए और दिल्ली स्टेशन पे खड़े थे, तो हमें कुछ जानकारी लेनी थी, तो हमने किसी से पूछा कि भैया यहाँ पर हम खाते गांव से आए मंदिर कहाँ मिलेगा, एक जैन बंधु मिला, बोले आप खाते गाँव से, वो नेमावर के पास वाला, बोले हाँ हाँ, तो वहाँ विद्यासागर जी का चात्र मास हुआ था, वो ही नेमावर, बोले हाँ हाँ, तो उसने तुरंत बोले हमारे पैर छू लिए कि हम तो दिल्ली राजधानी में पड़े लेकिन हमें गुरु जी के दर्शन नहीं होते, आप लोग कितने सौभाग्यशाली है जो की आपको विद्यासागर जी के रोज दर्शन करने को मिल रहा है, और बुंदेलखंडवासी भी इतने सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ पर आचार्य महाराज 25-50 वर्ष हो गए, 50 साल हो गए उनको रिक्शा के, और 35-40 साल यहीं पर जब हम लोग कुंडलपुर में थे और छुल्लक अवस्था में थे, उस छुल्लक की दीक्षा कुंडलपुर में हुई थी, उसके पहले ब्रह्मचारी अवस्था में सब लोग कहते आते आप यहीं यहीं रहते, बाहर तो कहीं जाते नहीं है, चुकबत तवा पटेड़ा कुंडल को हटा पटेड़ा जाएंगे पर इसमें घूमने कहीं बाहर निकलते ना इतनी बड़ी दुनिया चलेगी तो आप तो कहते थे भैया कहीं भी जाओगे बुंदेलखंड याद आएगा। जब हम लोग गुजरात यात्रा पे गए महुआ जी वगैरह इधर पूरी यात्रा की तब वास्तव में वहाँ पहुँचने के बाद यही लगता था जो संस्कार जो सात्विक भोजन की परंपरा बुंदेलखंड में मिली वो और कहीं पर नहीं। इसलिए आचार्य महाराज जहाँ कहीं भी जाते हैं घूम फिर कर गए बड़े बाबा के पास आई जाए यहाँ सहज चर्या का पालन हो जाता है। सहज रूप से आचार्य महाराज ये बात पहले बताते हैं हमें तो पता नहीं इधर छोटे छोटे गांव में 10-10, 15-15 यहाँ भी रुक के बता दो 15-20 दिन बहुत पहले 22 दिन कौन से सन में 86 में हाँ उस समय 22 ऐसे छोटे छोटे गांव में 25 दिन महीने भर 2-2 महीने ऐसे ही आचार्य महाराज यहाँ से हम निकाल देते थे। आज आचार्य महाराज को देखो तो अपन कल्पना ही करते कि इतने बड़े संत और हमारे यहाँ रुक गए लेकिन उस समय उन्होंने जिस तरह से बुंद आज भी कहीं पर भी वो जाते हैं किंतु लौट करके वहीं पर वो आते हैं। ये संस्कार सब हम लोगों का पुण्य है। एक और संस्कार आपको सुना देते हम लोग दक्षिण भारत में थे और एक बेटी आकर के बहुत रोने लगी उसको शादी नहीं कराना था तो उसके माता पिता जबरदस्ती उसकी शादी करा रहे थे। उसने आचार्य महाराज को पत्र लिख दिया कन्नड़ में कि आचार्य महाराज मैं शादी कराना नहीं चाहती मुझे मोक्ष मार्ग पे चलना है आर्य का दीक्षा लेना है और मेरे परिवार वाले मुझे जबरदस्ती कर रहे हैं और शादी कराने का कह रहे हैं और करते क्या है वो लोग ऐसे नहीं करते आप लोगों को पता नहीं है वो मौसी क्या रिश्तेदार चले जाएंगे और वहीं भेजा करके उसका वो विवाह कर देंगे। एक बेटी पहले हमारे पास है जो उसके साथ ऐसे हुआ नियम सागर महाराज जी से प्रभावित होकर के व्रत लेने के भाव थे लेकिन माता पिता उसको रिश्तेदारों में लेगा और रिश्तेदार में कोई ऐसी लेकर वहीं पर उसका सक्की मक्की करके उसकी शादी कर दी। और एक दिन वो बेटी आई हमारे पास फूट फूट के रोने लगी उसने सब बताया वो कन्नड़ वाले अपन हिंदी वाले फिर भी उसने बताया हमारा हमको शादी कराने का नहीं था पर माता वो मेरा पति है दारू पीता है और अन्य धर्मों को मानता है लेकिन जैन धर्म में कोई श्रद्धा नहीं है आप मेरा कितना पाप कर्म कर दे कैसे उद्धार होगा वो बहुत बातें कहते रहे और हमने कहा बेटा ग्रस्त आश्रम में फंसे तो उसको निर्वाह तो करना पड़ेगा इतना जरूरत है अपने पति को एक बार हमारे पास ले आना बाकी सब हम उसको समझा देंगे संस्कार कुछ मिल जाए। तो ये बेटी ने पत्र लिखा आचार्य महाराज को मैं आपके पास भाग करके आ जाऊं तो क्या आप मुझे अपने पास रखेंगे और नहीं रखेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी मुझे आप बताओ मुझे आशीर्वाद दो मैं क्या करूं। ये पत्र वो महावीर एक ब्रह्मचारी नियम सागर जी महाराज के साथ से वो जब आतिशी के पास आए तो आतिशी पढ़ने लगे चले देखो 3000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दूर वो कर्नाटक के गांव की बेटे का पत्र आया देखो क्या दशा है वहाँ आज हमें मुनि आरिका के शालीन में वहाँ वर्षों वर्षों मुनि आरिका नहीं मिलते और सपने संघ के साधु बड़े दुर्लभ होते हैं। एक गांव में हम पहुँचे जब बिहार करने लगे क्योंकि वहाँ रुकने का मन तो था क्योंकि आरिका वहाँ रुक ली अकेली आरिका वो धर्मशाला में रुकी तो कहने लगे महाराज आप भी यहीं रुक जाओ और कई स्थान थानी हम लोगों ने आ के बिहार करने लगे। एक महिला आके फूट फूट के रोने लगी कि हमें सच्चे साधु मिले नहीं आज आप मिले और वो भी ऐसे चले हमारा उद्धार कैसे होगा। हमें लगता है आज भी बुंदेलखंड जैसे वहाँ पर 2-2 किलोमीटर के दूर में गांव है 5-5, 4-4 सौ घर की जैन समाज है लेकिन उनको बताने क्या है सारे के सारे खेती कृषक वर्ग से जुड़े हुए हैं और क्योंकि वहाँ पे मिथ्यात की आराधना ज्यादा है उनको बताना खाने पीने की वहाँ परंपरा बिल्कुल भिन्न है क्योंकि आपको वहाँ पे 2 दिन भी रहना मुश्किल हो जाए और शुद्धि वहाँ श्रामकाचार बताने वाला कोई सबसे बड़ी कमी ये है कि हम लोग वहाँ पहुँच भी जाते हैं श्रावकों को यही नहीं पता चलता कि कैसे हाथ धोना कैसे आहार बनाना कैसे मर्यादित भोजन करना ये उनको पता नहीं रहता लेकिन आपका श्रद्धा उनकी इतनी मजबूत होती है कि यदि एक बार उन्होंने आपकी बात को स्वीकार कर ली तो प्राण प्रण से उसका वो पालन करते हैं। पर हम अभी वहाँ 4-5 साल रह करके आए उस समय लगता कितना दुर्लभ है गुरु महाराज का सानिध्य और यहाँ तो हर साल नहीं हर 2-4 महीने में 1-2 बार महाराज माता जी मिलते रहते फिर भी नरसे नारायण बनने की अगर हमारी यात्रा नहीं हो पा रही है तो सोचना चाहिए है तो बेटी आते थी क्या कर सकते हम, अब उतनी दूर से यहाँ आएगी, फिर उसने कहा मैं भक्के आऊंगी, माता पिता तो कह नहीं रहे, अब वो सब कुछ छोड़ करके आप रखोगे की नहीं, और नहीं रखोगे तो मैं क्या गाऊंगी। तो आते थी वैसे कली को कैसे कर्म का हो जाए, कैसा क्षेत्र उनको मिला है कि वहाँ पर अभी भी वहाँ पर पचासों ब्रह्मचारिणियां हैं। आज इसने कई बार आरिका संघ को कहा वहाँ तुम रुको, लेकिन आरिका संघ को वहाँ अपनी चर्या की अनुकूलता नहीं बनी और वो लोग गई थी। क्या बड़े बड़े संघ होने से बड़ी समस्या होती है उनके साथ में, दो तीन चार संघ तो फिर भी चल जाए, वहाँ पे ऐसे कि आपको अगला विहार करना तो सुबह बताना पड़ता है, तब वो श्रावक तैयार होते हैं, लेकिन अपने खेत में चले जाते सुबह से, अब जाना है तो जाओ विहार करो, चाहे कोई श्रावक साथ में नहीं होता, फिर भी वहाँ पर बहुत कुछ दुर्लभता है जो हमारे लिए यहाँ पर बहुत सुलभ है। और आचार्य महाराज को यहाँ दुकान इतनी अच्छी चली कि वो बुंदेलखंड छोड़कर ये गंगे जाते नहीं है। ये शिल्पी से, अब शिल्पी समझा रहा है कंकरों को तो सुने लो आप, ये शिल्पी से कड़वी सी घूट पीकर दीनता भरी आंखों से कंकर निहारते हैं माटी की ओर, और अब माटी स्वाधीनता से भूली आंखों से कंकरों की ओर मुड़ी देखती। इधर शिल्पी को डांट पड़ो, कंकरों को डांट पड़ गई, समझ आ गई बेटा ज्यादा होशियारी नहीं, बताओ हमने तुम्हें अलग किया तो कुछ ना कुछ कारण था, और एक कारण नहीं कितने कारण बता दिए, बता माटी में रह रहे किंतु उसके स्वभाव को अपनाने नहीं, महाराज के साथ रहना किंतु महाराज की बात या महाराज के जैसे एक लक्षण भी नहीं आ रहे, तो घर वाले कहेंगे काय को बैठे शिविर में, जो दुकान में बैठते तो कम से कम कसू कमाते, शिविर में भेजो और रहे पाजी के पाजी, अरे दस ग्यारह ले गया तो उसको सीख लो महाराज की संगति में, कुछ सदगुण लेकर के चले जाना, एक आध के घर में जब पहुंचो तो लोग कहें देखो भैया दस ग्यारह दिन शिविर अटेंड किया कुछ तो अंतर आया, पहले जैसे कसाई जैसे चिल्लाते थे गुस्सा करते थे अब गुस्सा कम हो गया, पहले खाते समय नखरे बताते थे अब सब नखरे कम हो गए, अब शांति से क्या है नखरे तो है देख लो आवाज बेटा पहले की अपेक्षा थोड़े से तो कम हो गए, अब ऐसे है कि देखो एकदम है ना छूटता नहीं, जी बड़ी चतुरी है, है? प्रभाव को पढ़ते मनो कब तक द्रव्य मिले क्षेत्र एक सीमा तक, तो पूरी तरह त्याग करो ना, पूरी त्याग त्याग करने के लिए बहुत पुण्य चाहिए, दस दिन शिविर में बैठने के लिए कितना पुण्य चाहिए आपको, कितनी परिस्थिति समझौता करके ये मौका मिला है फिर भी घर जा भी सोचे हमारा घर जाए, हाँ हमारे पास होगी तीन से हमारा घर चले आए काय के लागे चले आए तू सही हंडा कौन होता होते नहीं घर में खाना खाया है, अरे घर में खा लिया, जब सब तुमको बुला ही रहे तो हमें समझ में नहीं आता, महाराज भी कह रहे हैं भैया वहाँ नहीं जाना वहीं जाना है जहाँ निमंत, फिर भी वहाँ जा रहे, कितना राग है आपको, राग है कि आग है, आग है यह राग आग दहे सदा, अब आपने इतनी सब संगति मिली है सोचो तो महाराज सब कुछ छोड़ करके चार महीने तुम्हारे सांपर में रुक रहे हैं और तुम चार दिन दूसरे घर में अगर भोजन करे तो संकोच किस बात का, अरे जितना जी ध्यान लगा सही बताना दिल पे हाथ लगे जितना अच्छे दूसरे लोग पड़ोस में घर में कभी पड़ोसी से अच्छे अच्छे होते हैं, अच्छा देखना घर में तो ठीक है रोज रोज खा रहे इसलिए वो वैल्यू नहीं, लेकिन दूसरे जब वो कितना सम्मान से आपको भोजन कराने हैं बैठ करके एक एक ग्रास सोच करके एक एक गर्म रोटी तो सब गए थे आज बस गरम गरम और नियम ले लो कि एक ही बार को परसो पाए तो एक गरम रोटी रख दिया गए बेटा, अब हमने कल ही कही थी हमने आज प्रैक्टिकल की सोची इसलिए कहा था योगशाला है तो प्रयोगशाला भी जोरदार, अब तुम भले क्या रोटी हमने पहले बताई थी भैया एक अच्छी चार रोटी रख दो, अब तुमने सोची गरम गरम के चक्कर में और चली गई तीन, लेकिन यही तो परीक्षा है यही तो साधना है, इसी जितनी क्षमता आप आज धारण सुनो निश्चित मानना जितना भले नीचा बीसा कम ज्यादा देखे सामने वाले का आपके जो बहुमान सम्मान है वो सम्मान घर में नहीं मिलता, रखिए उठा के खा लो हम तक काम कर लें, आवा लगा भी होगा चाहिए, इधर बेचारे सामने बैठे भैया जी एक ग्रास और ले लो, भैया जी तनक तो और ले लो, लटका और ले लो, तनक जो छोड़ा और अब जो बता रहे इतना डबल हो गया, कई बार तो कह रहा था कहा गया वो बोले इतना ज्यादा जबरदस्ती इतना दे दिया कि अब वो खा तो लो, अब पानी पी लेकिन आज जगह नहीं, अब क्या करे, दिन भर रात भर फटा के फूट है, अब वो तो शाम को जबरदस्त है, अब चले खा लो अच्छे कोई भी भोजन, पानी ना मिले तो, इसीलिए भोजन से ज्यादा महत्वपूर्ण है पानी। और आपको एक ही बार बहुत पानी मिलना है, चलो शाम को मिले एक बार पानी अगर लेना तो पानी अच्छे से ले लो, तो बाद में भोजन कम भी ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आपको उल्टी का या कोई विकल्प होता है तुरंत भोजन बंद करके पानी का ले लो, तो ये सामने वाला इतना जरूरत अगर लेना पड़ेगा उसके भी गड़बड़, लेकिन देखो इतना सम्मान कभी घर में नहीं मिलता होगा। इसलिए पक्की मनमाला जैसे 11 दिन वैसे हमेशा की पक्की कर लो भैया संगे, लेकिन हमें संगे रखेंगे भी नहीं भैया, इतना पुण्य भी नहीं है ध्यान रखो, लेकिन इतना जरूर है श्रावक जो खिलाता है उसमें जो भक्ति और भावना जुड़ी है, तो घर में तो उनको वो भी प्रेम के वशभूत होकर खिलाते हैं, आपका परिवार का इसलिए वो खिलाते हैं, लेकिन दूसरों का आप जा रही है आपके में आपके संयम और त्याग का बहुमान उनके भीतर है, इसलिए वो अपना भोजन बाद में करते हैं लेकिन पहले आपको करा देते हैं। इसलिए प्रसन्नता के साथ जो मिला जितना मिला हंसते हंसते उसको स्वीकार करो। और कैसे मुनिराज प्रतिदिन दूसरों के यहाँ पर जाकर के और अपने यहाँ आपकी तो थाली पड़ोसी है जैसे चटक पटक करना हो कर लो, मुनि महाराज को तो अंजलि में जैसा मिलेगा वैसा लेना, अपने मन से नहीं ले सकते, तो इतना ये संयम धारण करके और हम कैसे आगे बढ़े, ये सौभाग्य यहाँ पर मिला है। तो यहाँ पर वह शिल्पी से कड़वी घूट पी लिया, किसने, कंकरों ने, अब वो दीनहीन बन गए पर माटी की ओर देख रहे हैं कि देखो आखिर इतनी कमी हमारी तो थी और फिर भी शिल्पी ने हमें कितना प्रताड़ित किया समझाया, माटी की शालीनता कुछ देखना देती थी, अब माटी कुछ कहती है, माटी ने उसकी शालीनता उसका नेचर कुछ कहता था, तो सुनो महासत्ता माटी गवेषणा समीचीना इसना और संकीर्ण सत्ता की विवेचना अवश्य करना है तुम्हें, अर्थ यह हुआ लघुता का त्यजन ही गुरुता का यजन ही सुख का सृजन है, अपार सागर का पार पा जाती है नाव हो उसमें छेद का अभाव भर, फिर भी कभी कभी वह नाव घबराती है पर वह घबराहट ना ही जलते है ना ही जल के गहराव से, परंतु जल की तरल सत्ता के विभाव से है, जो जल की गहराई को छोड़कर जल की लहराई में आकर तैरता हुआ सा अब डूबा, इनका खंड है मान का माप दंड। क्या ठीक है घड़ी आ गए 10 मिनट आए हैं संभव नहीं करने है हाँ तो सुन लो हम तो बता हमें क्या दे अपने तो काम को तैयार है, तो हमें क्या दिक्कत है, अपने तो कोई चिंता है नहीं शाम की, अब आप है लोग सोचो। हाँ देखो ये जैसे माटी अगर महासत्ता माटी गवेषणा करना हो अर्थात महासत्ता माने निज स्वरूप को अनंत आत्म स्वरूप को यदि प्राप्त करना हो तो हमें संकीर्ण सत्ता का विरेचन करना होगा। वो कंकरों को माटी समझाती है कि मेरा तेरा मेरा संकीर्ण सत्ता किसे कहते हैं, अयम निजम परो वेति गणनाम लघु चेतसाम, ये नीति है जो मना कहना की कम बुद्धि वाले होते हैं, ये मेरा है ये तेरा इसी को लेकर के सारी जिंदगी लड़ते हैं, लेकिन संकीर्ण सत्ता का विरेचन करना होगा और लघुता का त्यजन ही गुरुता का यजन है, लघुता को छोड़ करके गुरुता महानता किसमें इसको आप समझो, वो नाव जो है ना अपार सागर का पार पा जाती है नाव, वो डरती नहीं है, बस उसमें छेद का अभाव होना चाहिए, छोटी सी भी नाव है कितना भी गहरा समुद्र हो और कितना भी विशाल समुद्र हो वो नाव कभी घबराती नहीं है, किंतु घबराती है तो जल के विभाव स्वभाव से जो हिम के रूप में परिवर्तित, हिम यानी दर्शन, और दर्शन के रूप में जो परिवर्तित हो गया है ऐसा हिम का खंड है मान का मापदंड। मानी व्यक्ति कैसा होता है, उस तो गर्भ की सिल्ली के समान होता है जो न स्वयं है, वह सरलता का अवरोधक है, दरलता का अवरोधक है, इतना ही नहीं तरलता का अति शोषक और सघनता का परिपोषक है, न तैरना जानता है। बर्फ की बात बता रहे, सुन लेना आप, फिर और खुलासा आपको कर देंगे। नहीं तैरना जानता है, नहीं तैरना चाहता है। बर्फ की सिली आप पानी में डाल दो तो जहाँ वही रह सकता भी नहीं। ना तैरना जानता है, ये मानी व्यक्ति की कैसी दशा है आप आकलन करिएगा, पढ़िएगा, बिल्कुल लगेगा सब प्रसन्न मानी व्यक्ति ऐसे ही होते हैं, चाहे हम हो चाहे तुम हो। मान कसा जब प्रादुर्भूत होती है तो खेद की बात है, तरण और तारक को डुबोना चाहता है, नाव और उसके नाविक दोनों को डुबोना चाहता है, जल पर रहना चाहता है, पर जल में मिलकर नहीं, समाज में रहना चाहता है, समाज में मिलकर नहीं, समाज पर रहना चाहता है, सबसे ऊपर हाईलाइट होकर के, मैं आई एम पावरफुल मैन, मेरी चलती है। जल पर रह, पर जल में मिलकर नहीं, जग को जल के तल तक भेज कर उस पर ऊपर रहना चाहता है, सबकी बेइज्जती करके स्वयं इज्जतवान बनना चाहता है, सबकी तोहिन करके हकी करके स्वयं बड़ा बनना चाहता है। जल में मिलकर नहीं, हे मानी प्राणी, पानी को तो देख, अब तो पानी पानी हो जा, अब तो तनक मान को गला दे, हे प्रमाण कब हो, मान का अवमान कब हो, और माटी की देशना की धारा भी टूटे।